अति रोष से अति क्रोध से यक्षों का वध कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए स्वयं वो मनु प्रकट होते हैं और उनको परामर्श देते हैं कि आप इतना क्रोध मत कीजिए, आप भगवान के शुभ भक्त हैं, आपको एक आदर्श उदाहरण स्थापित करना चाहिए और कृपया करके इन यक्षों का वध करना समाप्त करें। और फिर वो बताते हैं भगवान की महिमा का, बताते हैं कि वास्तव में जो आपके भाई उत्तम का वध हुआ है ये यक्षों के द्वारा नहीं हुआ, सब कारणों के कारण कौन है, भगवान है। उन्होंने इससे पहले भगवान के द्वारा जिस तरह से भौतिक जगत की सृष्टि की जाती है भागी जाता है उसका वर्णन किया। और इससे पिछले श्लोक में 24वें श्लोक में जिसमें कोई तात्पर्य नहीं है, ना चैते पुत्र भर्तु हंतारो धन दानुगा विसर्ग दान योस्तात पुंसो दैवम ही कारणम, इसका अनुवाद है कि हे पुत्र वे कुबेर के अनुचर यक्ष गण तुम्हारे भाई के वास्तविक मारने वाले नहीं है, प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही होती है। तो यहाँ पे स्वयं मनु ने उनको स्पष्ट कर दिया कि आप ऐसे ही यक्षों पर क्रोध प्रकट कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वास्तव में आपके भाई उत्तम के और हर जीवात्मा के जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही होती है। और वो परमेश्वर कैसे हैं, स एवं विश्वम सृजति स एवावती अंतिम च स एवं विश्वम सृजति, वही इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, स एवावती वही पालन करते हैं, अंतिम च वही इसका संहार करते हैं। तो अगर ये कार्य करते हैं कि पैदा करते हैं फिर पालते हैं फिर इसको मार देते हैं फिर तो कर्म हो गए, तो इस कर्म में उनको फंसना चाहिए। तो क्या कहते हैं, अथापि ही अनंकारा न अज्यते गुण कर्म भी, किंतु ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे ना तो अहंकार से ना ही प्रकृति के गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। तो बहुत ही सुंदर इसमें तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी का। श्री प्रभुपाद जी पहले इस तात्पर्य की लाइन में बता रहे हैं कि श्लोक में आगत अहंकार शब्द का अर्थ है अहंकार रहित, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अहंकार से रहित है, किंतु हम सब भगवद गीता पढ़ते हैं और सुनते हैं तो भगवद गीता में सैकड़ों बारी, किसी भक्त ने मुझे बताया था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा कि कितनी बारी, सैकड़ों बारी भगवान ने कम से कम अहम और माम शब्द का प्रयोग किया है। अहम सर्वस्य प्रभु मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ, मता परतरम न अन्य दस्ते किंचित सि धनंजय, कि मुझसे ऊपर और कोई नहीं है, माम एकम शरणम रजा, केवल मेरी शरण में आओ। तो जब कोई नया व्यक्ति इन बातों को सुनता है तो कहते हैं कि आपके भगवान तो बड़े अहंकारी हैं, बात बात पर अहम माम कि मैं ही सबका कारण हूँ, मैं ही सब सृष्टि का करते करने वाला हूँ, केवल मेरी शरण में आओ, किसी और की शरण मत जाओ। तो ये बहुत अहंकारी सुनाई देते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और यहाँ श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान तो अहंकार से रहित है। तो वास्तव में जो श्री प्रभुपाद बात के तात्पर्य में से बता रहे हैं कि भगवान जो अहंकार से रहित है वो मिथ्या अहंकार से रहित है, भगवान मिथ्या अहंकार से रहित है। हर जीव और परमात्मा में अहंकार तो होगा ही होगा। जीवात्मा का सही अहंकार क्या है कि जीव स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, यह है असली अहंकार। लेकिन जीवात्मा इस भौतिक जगत में आने के कारण मिथ्या अहंकार में फंस जाती है और कहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के जो बीच का लिंक है, जो धागा है, वो है मिथ्या अहंकार। इसी मिथ्या अहंकार के कारण हम इस भौतिक जगत में गिरते हैं। और बताया जैसे श्रील प्रभुपाद ने कि एक बार एक शरीर धारण करने के बाद हम अपने आप को इस शरीर से अपनी पहचान करनी शुरू कर देते हैं। कभी हम देवता के शरीर में, कभी मनुष्य के शरीर में, कभी पशु के शरीर में, कभी पक्षी के शरीर में, और हर बारी इसी चक्कर में हम पड़े रहते हैं। और जिस शरीर में हम रहते हैं हम सोचते हैं यही मेरा है, मैं और मेरा, कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरी माता है, मेरे पिता है। फिर शरीर बदलता है, अब ये हिंदू परिवार में है, अगली बारी हो सकता है मुस्लिम परिवार में पैदा हो जाए, फिर ये मुस्लिम पिता, मुस्लिम माता, मुस्लिम पत्नी, फिर हो सकता है पशु योनि में चले जाए, फिर हमारा वही परिवार। तो है हमेशा मैं और मेरा के चक्कर में फंसे रहते हैं और इस झूठे अहंकार के कारण हम बार बार हमारे पुनरपि मरणम पुनरपि जन्म होता है। और देखिए इसमें अद्भुत बात यह है कि जिस शरीर में हम रहते हैं उसी शरीर में अपने आप को बहुत सुखी अनुभव करते हैं, उसी शरीर में बहुत सुखी अनुभव करते हैं, चाहे वो मल में पड़ा हुआ सुअर हो, मल का कीड़ा हो, चाहे मनुष्य हो या देवता हो, हर कोई अपने आप को उसमें सुखी पाता है। भागवतम के तीसरे स्कंद में बताया गया है, कपिल भगवान बताते हैं माता देवहूति को कि बद जीव का गुण है कि बद जीव को जो भी शरीर मिलता है उसमें वो सुखी रहता है। हालांकि किया तो नरक में भी जाता है तो नरक में उसको तरह तरह का उत्पीड़न देने के लिए उसको यातना शरीर मिलता है तरह तरह की उसको पीड़ाएं दी जाती है उस यातना शरीर से लेकिन उस यातना शरीर में भी रहते हुए भी वो भोग करता है वो उसमें सुखी है तो ये हमारी स्थिति है आप सबको मालूम है उस उदाहरण का जब इंद्र को अभिशाप मिला था और इंद्र यहां धरती पे आए थे सुअर बनकर तो सुअर बनने के बाद भी इंद्र अपने आप में मग्न है और बाद में ऊपर से लोग आते हैं बताते हैं चलिए इंद्र जी ऊपर चलिए कैसी बात कर रहे हो कैसे ऊपर जा सकता हूं देखते नहीं मेरा परिवार है इसका पालन कौन करेगा तो हम सबकी यही स्थिति है जिस शरीर में रहते हैं जिन परिस्थितियों में रहते हैं उसमें इतना बध जाते हैं तभी हमें बध जी बोला गया प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा इतने बधे हुए हैं बस यही सब कुछ है यही बस मालूम है ज्ञान है कि क्षणिक है ये तो कभी भी समाप्त हो जाएगा फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा फिर मेरी पहचान बदल जाएगी लेकिन नहीं नहीं यही सब कुछ है तो ये झूठा अहंकार लेकिन भगवान इस अहंकार से नहीं बंधते भगवान हमेशा इस अहंकार से बने रहते हैं भगवान जब यहां धरती में आते हैं तो चाहे वो भगवान भौतिक जगत में रहे या आध्यात्मिक जगत में रहे भगवान भगवान रहते हैं भगवान हमेशा षड ऐश्वर्य पूर्ण है अगर उस भौतिक जगत में वो वराह के रूप में भी आते हैं एक सुअर शुकर के रूप में भी तब भी वो दिव्य हैं तब भी वो सर्व आकर्षक है एक साधारण सुअर आकर्षक या सर्व आकर्षक आकर्षक भी नहीं है लेकिन जब भगवान वराह के रूप में आते हैं तब भी वे सर्व आकर्षक है जब भगवान ऋषभ जी के रूप में अवतार लिया था तो भागवत में वर्णन है कि जब ऋषभ भगवान मल त्यागते थे तो उस मल की सुगंध 80 मील तक जाती थी ये भगवान की दिव्यता है 80 मील तक भगवान के मल की सुगंध जा रही है ये भगवान की दिव्यता है दिव्य शरीर है भगवान का शरीर ऐसे भौतिक नहीं है भगवान चाहे छोटे बच्चे हो या युवा अवस्था में हो हमेशा ही भगवान रहते हैं छोटे बच्चे के रूप में उन्होंने पूतना का वध किया अघासुर का वध किया त्रावृत का वध किया और युवा अवस्था में आके शिशुपाल का वध किया दंतवक्र का वध किया तो ऐसा नहीं कि युवा आने के बाद उनकी कुछ मांसपेशियां बढ़ गई मसल्स बढ़ गए तब उनमें शक्ति आई नहीं जब वो छोटे बच्चे थे या बड़े थे वे हमेशा भगवान रहते हैं चाहे वो भौतिक जगत में आए या आध्यात्मिक जगत में रहे हमेशा भगवान रहते हैं जिस तरह से जब एक प्रेसिडेंट किसी जेल में जाता है तो प्रेसिडेंट जानता है कि हाँ मैं प्रेसिडेंट हूँ मैं खाली जेल में भ्रमण के लिए आया हूँ अपने आप को कैदी समझना शुरू नहीं करता लेकिन हम जो कैदी हैं इस भौतिक जगत में हम अपने आप को अपने इन वस्त्रों से पहचाना शुरू कर देते हैं जब जीवात्मा नीचे गिरती है भौतिक जगत में इस जेल खाने में तो सबसे पहले क्या किया जाता है जब व्यक्ति जेल में जाता था जब कोई व्यक्ति जेल में प्रवेश करता है तो सबसे पहले क्या दिया जाता है उसको कपड़े डाले जाते हैं उसके ऊपर तो जैसे ही कपड़े डाला कैदी नंबर 10 तो वो शुरू करता है बस मैं तो कैदी नंबर 10 ही हूँ उसी ढंग से हम इस जेल खाने में आते हैं मनुष्य की शरीर मनुष्य के वस्त्र मिले या सुअर के वस्त्र मिले तो हम सोचना शुरू करते हैं कि मैं सुअर हूँ मैं मनुष्य हूँ बस लेकिन जब कोई प्रेसिडेंट जेल में आएगा तो वो कपड़े नहीं बदलता उसके ऊपर कपड़े नहीं डाले जाएंगे वो एज इट इज आता है और एज इट इज चला जाता है इसी ढंग से जब कृष्ण यहाँ पे आते हैं तो उनके ऊपर वस्त्र नहीं डाले जाते यानी कि कृष्ण की आत्मा और देह में कोई अंतर नहीं है तो जो प्रेसिडेंट आएगा वो कभी ये नहीं सोचेगा कि एक घंटे के लिए मैं जेल में आया हूँ तो क्या मैं कैदी हो गया नहीं वो हमेशा प्रेसिडेंट रहेंगे इसे कहते हैं अच्युत भगवान कभी गिरते नहीं है भगवान केवल अवतरित होते हैं उतरते हैं इसीलिए भगवान गीता के चौथे अध्याय में बता रहे हैं कि अजो पिसन अव्यात्मा भूतानि ईश्वरोपिसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ और सभी भूतों का महेश्वर हूँ फिर भी इस भौतिक जगत में मैं अपने दिव्य प्रकृति के द्वारा आता हूँ यानी कि भगवान दिव्य प्रकृति के द्वारा आते हैं एज इट इज जैसे हैं वैसे के वैसे ही आते हैं इसी ब्रह्मा जी बता रहे हैं अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम कि भगवान अद्वैत है भगवान के अद्वैत मतलब उनके शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं है और वे अच्युत हैं अच्युत यानी कि वो नीचे नहीं गिरते किसी अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते और इसी तरह से भगवान के अवतार का वर्णन करते हुए भागवतम के पहले स्कंद में सोनक ऋषि जी के प्रश्न पर सुत गोस्वामी जी उनको बताते हैं कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप से उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए कि भगवान बलराम जी के साथ आए द्विभुज मनुष्य के रूप में सरल मनुष्य के रूप में लेकिन उन्होंने क्या किया प्रच्छन्न रूप से गूढ़ कपट मानुष प्रचल रूप से अति मानवीय कार्य किए, ऐसे कार्य किए कि जो साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। कौन सा छोटा बच्चा इतनी बड़ी जैसे कहते हैं राक्षसनी को मार सकता है, कौन सा छोटा बच्चा पूरे पूरे जंगल में लगी आग को पी सकता है, कौन सा 7 साल का बच्चा अपनी बाहिनी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा सकता है, असंभव। अति मानवीय कार्य किए तो ये सब भगवान के शरीर से ही संभव है। तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, और जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो उन पर प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उन पर कोई अहंकार का प्रभाव है, ना ही प्रकृति के 3 गुणों का कोई प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब उन प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आते हैं तो भगवान गीता के 3रे अध्याय में बता रहे हैं कि ना ही कर्माणि तिष्ठति जातु कर्म, ना ही क्या है वो श्लोक, ना ही कर्माणि ना ही क्षणमति जातु तिष्ठति अकर्म के कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जैर गुणा, कि कोई भी जीव आत्मा एक क्षण भी बिना कार्य किए नहीं रह सकती, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर उसको कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान कह रहे हैं अच्छा आप यहाँ आगे भौतिक जगत में अब आपको भी काम करना पड़ेगा। वो एक सिनेमा में गाना था ना, दुनिया में आए हो तो नहीं काम करना पड़ेगा, ऐसा कुछ ध्यान नहीं आ रहा कौन सा, हाँ दुनिया में आए तो काम कर प्यारे, तो काम के बोले प्यारे अब तू आ गया यहाँ पे कन्हैया तो काम तो करना ही पड़ेगा तुझे, बिना काम के नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है भगवान के साथ, भगवान की राखी 4 अध्याय में बता रहे हैं कि ना मैं कर्माणि जिम्पन्ति ना मैं कर्म फले स्प्रिया, ना मैं जो कर्म करता हूँ उसमें बंधता हूँ और ना ही मेरी कर्म करने की इच्छा होती है। अब भगवान देखिए, भगवान ने जो कर्म किए भगवान के कर्म फलों में बंधते नहीं है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ तो अर्जुन कितने अच्छे सिद्धांत दे रहा था कि क्यों अहिंसा करनी, क्यों अपने भाइयों को मारना, क्यों गुरु को मारना, भोगने दो इनको, मैं चला जाऊंगा जंगल में भीख मांग के अपना गुजारा कर लूंगा, जरूरी मेरे को राज्य लेना, इनके खून से भिगा हुआ राज्य क्या फायदा है इससे पाप का, कितने अच्छे सिद्धांत हैं। भगवान कह रहे जबरदस्ती नहीं मारो, और करोड़ों करोड़ों लोगों को मरवा दिया। तो अगर भगवान के कर्मों का फल होता तो उन पर करोड़ों लोगों की हत्या का फल मिलना चाहिए था, और करोड़ों लोगों की हत्या करवा दी उन्होंने, इतनी बड़ी हिंसा करवा दी, तो बेचारे पता नहीं कौन सी निम्न योनि में होंगे कितना पाप करवाया, इतनी हिंसा, बेचारा अर्जुन तो कह रहा था नहीं लड़ूंगा, जबरदस्ती उसको लड़वाया, घुमा के पीड़ा को कन्विंस करके लड़ो, जबरदस्ती उसको लड़ा दिया, वो लड़वा दिया तो उनको कितना फल मिलना चाहिए। और देखो कैसे कैसे कार्य करते हैं, मथुरा में गए धोबी से कहा वस्त्र दे दो, हिंदू का खट से मार दिया, अरे आपके जीवात्मा किसी से कुछ मांगे ना दे उसको मारने का अधिकार है क्या, क्यों मार रहे हो आप, मार दिया फल मिलना चाहिए, माखन चुरा रहे हैं, क्या हक है आपका किसी घर में जाओ माखन चुरा रहे हो, गोपियों के वस्त्र हर रहे हैं, पराई स्त्रियों के साथ रात को नृत्य कर रहे हैं, करिए आप करके देखिए, माखन चुराइए जाएंगे जेल में पर स्त्रियों का संग करेंगे, हो सकता है यहाँ बच जाएं लेकिन यमदूत और यमराज नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ऐसे नरकों में ले जाएंगे, और बताया गया कैसे कैसे नरकों में सजा दी जाती है, पर स्त्री पर पुरुष गमन करने के लिए एक लोहे की तप्ती मूर्ति होगी स्त्री की, और जबरदस्ती यमदूत और पप उसको चिपकाएंगे और पीछे से मारेंगे डंडे कि आलिंगन करो इसका, करो आलिंगन इसका, बहुत बार स्त्री गमन किया करो आप इसका आलिंगन, तो करेंगे क्या, भगवान ने तो करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रास रचाया तो कितना बड़ा पाप, कौन कौन से नरक में बेचारे गए होंगे, तो भगवान के कर्मों का फल मिलेगा क्या, नहीं, भगवान प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं। ये सब कर्मों का फल, कर्म की परिभाषा ही क्या है, कर्म की परिभाषा है कि प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होकर कार्य करना। तो भगवान तो गुणाधीश है, भगवान गुणाधीन नहीं है, भगवान गुणाधीश है, ये पूरा का पूरा जगत प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है, त्रिभी गुण में यह भी सर्वमिदम जगत मोहितम ना भी जानाती माँ में भी परम अव्ययम, कि ये पूरा का पूरा जगत 3 गुणों से मोहित है और मैं इन 3 गुणों से परे हूँ इसलिए कोई मुझे समझ नहीं पाएगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि ठीक है आपकी बात मान ली कि भगवान को इन कर्मों का फल नहीं मिलेगा, ऐसे तो कई देशों में जो राजा होते हैं वो बड़े बड़े पाप कार्य करते हैं, अब राजा को कोई सजा तो दे नहीं सकता, तो मान लिया आपकी बात कि कृष्ण थे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर दिए, अब वो बहुत बड़े थे उनको कोई फल नहीं मिला, नहीं कृष्ण ने ये कार्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं किए। ऐसा नहीं था कि कृष्ण बहुत कामुक थे, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं 16,000 पत्नियां चाहिए उनको अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए। और अपनी 16,000 की पत्नियां छोड़ो फिर प्राय स्त्रियों के साथ भी अपने संग कर रहे हैं, इतने कामुक थे वो, इतने बड़े पाप, इतनी बड़ी चोरियां, किसी को भी मन जाए मार देते थे। तो ये तो बड़े ठीक है ऑटोक्रेटेड डिक्टेटर है क्या वो? नहीं, नाम में कर्म फले स्प्रिया, मेरे में कर्म करने की कोई इच्छा फल की इच्छा नहीं है। तो इसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है मेरे हिसाब से, गर्भ संहिता में आता है कि एक बार कृष्ण जब गोपियों से मिलने गए तो वो बहुत लेट हो गए। तो गोपियों ने पूछा कहां थे आप, तो बोले थे कि मेरे गुरु आए हुए दुर्वासा मुनि, मैं उनके साथ था। तो गोपियों ने इच्छा प्रकट की कि हम भी आपके गुरु से मिलना चाहेंगे। तो बोले ठीक है चले जाओ, यमुना पार करके आपको जाना पड़ेगा। उन्होंने तो बोला अच्छा, लेकिन हम यमुना को पार कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने कहा कि आप यमुना जी से कहना कि अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो ये यमुना जी हमें जाने दो। तुमको फिर बड़ी हैरान होगी, रोज हमारे साथ रास बचाते हो और बोल रहे हो कृष्ण बाल ब्रह्मचारी। चलो ठीक है, वो मान गए इस बात को। गोपियां जाती हैं यमुना जी के पास, बहुत पानी पड़ा होगा, बोलते यमुना जी अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें जाने दो। तुरंत यमुना सूख जाती है, वो चले जाते हैं। और करोड़ों गोपियां थी, वो दुर्वासा मुनि से मिलने गई तो सब के सब बड़े बड़े थालों में बड़े बड़े भोग लेके गई कि साधु के पास जा रही है। जाते हैं दुर्वासा मुनि के पास, दुर्वासा मुनि बोले किसने भेजा आपको? बोले कृष्ण ने, बोले आपके लिए लेके आए हैं। तो दुर्वासा मुनि बोला ठीक है। दुर्वासा मुनि जी बहुत बड़े योगी हैं, अपना विस्तार करते हैं, पूरा पूरा अपना मुख खोलते हैं, कहते सब के सब डाल दो, सारी की सारी गोपियां अपने थालों में जो भी लाई है सब डाल दिया। उसके बाद जब सब समाप्त हो गया तो बोले अब हमें वापिस जाना है। ठीक है चले जाओ। अरे अरे कृष्ण ने हमें आने का तरीका बताया था, अब जाने के लिए क्या गए? दुर्वासा मुनि बोला कोई बात नहीं, आप यमुना जी के पास जाना और कहना कि अगर दुर्वासा मुनि ने केवल घास का ही रस पिया है तो कृपया हमें जाने दो। कि दुर्वासा का अर्थ क्या होता है? दुर मतलब घास का रस, दुर्वासा मुनि केवल घास का रस पीते थे। तो अगर दुर्वासा मुनि ने केवल घास का रस पिया है तो हमें जाने दो। गोपियां बड़ी हैरान, अरे बड़े के बड़े थाल खा गए और बोल रहे केवल घास का रस पिया है तो जाने दो। यमुना जी के पास जाती हैं गोपियां, बोलती हैं कि अगर दुर्वासा मुनि ने केवल घास का रस पिया है तो हमें जाने दो। यमुना जी सूख जाती हैं, आराम से गोपियां चली जाती है। फिर वो कृष्ण से मिलती है, कृष्ण बोलते हैं कहो कैसा मिले आप दुर्वासा मुनि से? तो बोले अरे जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे गुरु, दोनों की दोनों झूठे, रोज हमारे साथ रास रचाते हो, कहते हो बाल ब्रह्मचारी हो, और वो थाल के थाल खा गया और बोलते मैंने कभी घास का जूस ही पिया बस। तो क्या है वो बता रहे हैं, नाम है कर्म फल स्प्रिया, मैं जो तुम्हारे साथ रास नचा रहा हूँ या फिर दुर्वासा मुनि जो सारे सारे थाल खाए हैं ये कोई अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं है, केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। तो भगवान जितनी भी लीलाएं करते हैं माखन चुरा रहे हैं, भगवान माखन क्यों चुरा रहे हैं? क्योंकि जब गोपियां माखन बनाती थी तो हमेशा कृष्ण का स्मरण करती थी, वो चाहती थी कि कृष्ण आए और इसको पाए, तो कृष्ण उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वो माखन चुराते थे। हर गोपी चाहती थी कृष्ण मेरे पति के रूप में आए, इसलिए भगवान ने उनके वस्त्र हरण किए, उनके साथ रास रचाया। तो कृष्ण तो बाल ब्रह्मचारी ही है। कृष्ण नाम कर्म फल से नाम कर्माणि लिम्पन्ति नाम कर्म फल स्प्रिया इतिमाम यो भी जानाति कर्म भी न स पद्यते। जो इस बात को समझता है भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उसको कर्म बंधन के चक्कर में नहीं फंसता। भगवान कह रहे हैं कि जो केवल इतना जान जाए कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देवं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। कि जो केवल इतना ही जान जाए कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है, वो इस भौतिक जगत से छुटकारा पाकर मेरे धाम में आ जाता है। कि अगर जितने जानने मात्र से ही कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, हमें छुटकारा मिल सकता है, तो क्या वो व्यक्ति दिव्य नहीं होगा? अगर हमें किसी भौतिक पुरुष के मालूम में चल जाए कि बहुत महान है, उसका हम गुणगान करते रहे महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय, तो महात्मा गांधी की जय करते करते हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, जब भगवान के जन्म कर्मों का वर्णन करते हैं गुणगान करते हैं, तो उनका गुणगान करते करते ही हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। तो यह है भगवान की दिव्यता। ना भगवान को अहंकार पकड़ता है, ना ही भगवान प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में आते हैं, और ना ही भगवान को कर्मों का फल मिलता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, अब जानती माम मूढ़ा मानुषिन तन वाशिता परम भाव अजानता मम भूत अव्यय, कि जो मूर्ख व्यक्ति है जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूं तो मुझे साधारण मानव समझते हैं, जैसे उस दिन इसके स्पष्ट में तो वो बता रहे थे कि राम जी कर्मों के फल के कारण भटक रहे हैं बेचारे इधर उधर, कितना बड़ा दुर्भाग्य हुआ उनके साथ, उनकी पत्नी चुरा ली गई और रो रहे हैं बेचारे। तो क्या है, कर्मों का फल है, देखो राम जी को भी नहीं छोड़ा। तो ये है, लोग मूर्ख समझते हैं कि ये साधारण मनुष्य है, ये कहते हैं मायावादी। एक भारत के प्रेसिडेंट हुए थे डॉक्टर राधाकृष्णन, गीता लिखी उन्होंने, अपने आप को गीता का भक्त कहते थे। तो ये श्लोक है, मन मना भव भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। तो इसमें साफ भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा स्मरण करो। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को। कृष्ण ये नहीं कह रहे मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, ये जो कृष्ण के अंदर कोई और है उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो। अरे भाई कृष्ण के अंदर अब कौन हो गया, इसका कृष्ण के कोई अंदर मतलब कृष्ण की आत्मा और देह में अंतर है? कृष्ण तो स्वयं साक्षात आत्मा ही है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो उनके अंदर अब क्या होगा? तो इस तरह से वो गलत प्रचार करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले हैले सर्वनाश। मायावादी कृष्णेर अपराधी, ये भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अपराधी हैं। कई शास्त्र में वर्णन है कि अगर हम ऐसे व्यक्ति का दर्शन भी कर लें कि जो कृष्ण को साधारण मनुष्य समझता है, तो हमें कपड़ों समेत स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नजर आ गया जो बोलता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य है, कृष्ण का शरीर भौतिक है, उसके दर्शन करते ही हमें कपड़ों समेत स्नान कर लेना चाहिए, बल्कि हम इतने दूषित हो जाएंगे। कितना बड़ा अपराध है ये। चैतन्य लीला में जब महाप्रकाश लीला चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे, अपने हर भक्तों की इच्छा को पूरी कर रहे थे, तो उन्होंने मुकुंद को ही अवहेलना की। उनके जो भक्त थे मुकुंद, उनके ऊपर वो कृपा नहीं कर रहे थे। तो सब भक्तों ने पूछा कि आप मुकुंद पर कृपा क्यों नहीं कर रहे? तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मुकुंद दोगला है, भक्तों के बीच में रहता है तो भक्ति की बातें करता है, और यहां से जाने के बाद वो मायावादियों के पास चला जाता है। वो बोलते हैं जब कोई मायावादी ये कहता है कि कृष्ण का शरीर भौतिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गरम गरम लोहे की सलाखें मेरी पीठ में मार रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये बोलता है कि कृष्ण का शरीर भौतिक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई गरम गरम सलाखें लेकर मेरे शरीर पर मार रहा है। तो इतना कष्ट होता है भगवान को अगर हम कोई बोले कि भगवान का शरीर भौतिक है। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बता रहे हैं। तो इसलिए हमें मायावादी भाषाओं से बचना चाहिए। अब इनकी मूर्खता देखिए ना, वास्तव में कितने मूर्ख हैं ये लोग। अगर समझ लीजिए कि कृष्ण का शरीर भौतिक है और कृष्ण हमारी तरह एक बद्ध जीव है, अगर वो बद्ध जीव है तो उनकी वाणी की क्या महत्वता? और सारे के सारे मायावादी अपने गीता पे भाष्य देते हैं, गीता पे प्रपट लिख रहे हैं, कमेंट्री दे रहे हैं, अरे क्यों कर रहे हो भाई, ये बद्ध जीव की बात है। ये एक बद्ध जीव ने दूसरे बद्ध जीव से कही तो क्या फायदा ऐसी बातों का? ये तो साधारण बात हो गई, इसमें कौन सी दिव्यता है? तो वो लोग गीता को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते। धिक्कार है ऐसे लोगों को, गीता को मान रहे हैं कृष्ण को नहीं मान रहे। गीता के उल्टे सीधे तात्पर्य दे रहे हैं, पांच पांडव मतलब पांच इंद्रियां और मन इसका राजा, पता नहीं क्या क्या अपना तात्पर्य दे रहे हैं। गीता को मान रहे हैं, गीता के लेकिन बोलने वाले कृष्ण को नहीं मान रहे। तो अगर आप कृष्ण को नहीं मानते तो फिर गीता के ऊपर क्यों तात्पर्य लिख रहे हो? ये तो एक बद्ध जीव के द्वारा बोली गई बात है। बद्ध जीव है ना, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में है, वो कभी भी झूठ बोल सकता है, कभी भी गलती कर सकता है, कभी भी मोहित हो सकता है, चीटिंग कर सकता है। चीटिंग कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं मता परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, कि मेरे से ऊपर कोई है नहीं, लेकिन वास्तव में उनसे ऊपर क्या है? ब्रह्म ज्योति। धोखा दे गया हमें, क्योंकि बद्ध जीव है, बद्ध जीव है वो। तो इसलिए वो कहते हैं गीता कुछ लोग तो ठीक है कुछ गलत है। बद्ध जीव की वाणी कुछ ठीक हो सकती है कुछ गलत हो सकती है। और अगर समझ लो भगवान भौतिक है, उनका शरीर भौतिक है, तो फिर उनके नाम में दिव्यता कैसे है? जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो क्यों दिव्यता का अनुभव होता है? बड़े से बड़ा नशा करने वाला व्यक्ति भी 20 घंटे मदिरा पान नहीं कर सकता। हरे कृष्ण महामंत्र का ऐसा नशा है, जिसको ये नशा आ गया तो 24 के 24 घंटे इसका कीर्तन कर सकता है। इसमें क्या दिव्यता है? तो हमें एक बार एक व्यक्ति मिले तो हमने बोला हरे कृष्ण महामंत्र जपा कीजिए, इसको मंत्रा मेडिटेशन बोलते हैं, आपका मन में काबू होगा, आपका कंसंट्रेशन एकाग्रचित होंगे आप। बोलते ठीक है, वो तो कुछ भी बोल लो, किसी भी नाम को आप बार बार दोहराते रहो, उस नाम को सुनते रहो, आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। इसमें कौन सी बात है? कोई बिंदु पे ध्यान देता है तो आप शब्द पे ध्यान देना शुरू कर दो। मैंने उनको बोला ठीक है, जो स्टेशन में घूमता रहता है चाय 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 करता रहता है उसका मन तो बिल्कुल काबू में होना चाहिए. सुबह से लेकर रात तक वो चाय चाय बोलता रहता है. बिल्कुल मन काबू में होना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रचित होना चाहिए. तो बेचारा तो यहाँ धक्के खा रहे हैं इधर. तो केवल चाय चाय बोलना और कृष्ण कृष्ण बोलना एक ही बात है नहीं. तो अगर भगवान का शरीर भौतिक है तो उनके नाम में दिव्यता कैसे हो सकती है. और फिर ये मायावादी लोग कीर्तन भी करते हैं. देखिए वो देखिए गीता के प्रवचन भी देते हैं फिर कीर्तन भी करते हैं. वो कीर्तन भी कौन सा? हरे कृष्ण महामंत्र का. वो कीर्तन नहीं करते, नाचते भी हैं. कई ऐसे आपको मायावादी संस्थाएं मिल जाएंगी जो कीर्तन भी करती है नाचते भी हैं. तो ऐसे लोगों को बोला जाता है चैतन्य पथ शंकर मत. चैतन्य पथ की पथ तो रास्ता किसका फॉलो कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु का. लेकिन मत क्या है? शंकराचार्य का. तो उन लोगों से बात कर तो कहेंगे ठीक है, भक्ति एक सीढ़ी के समान है, शुरू शुरू में करनी चाहिए, अंततः तो हमने क्या होना है? ब्रह्म में लीन होना. तो कीर्तन करने से हमें आनंद आएगा, भक्ति करेंगे भजन करेंगे तो हम शुद्ध होंगे, और शुद्ध होकर जब फिर अंततः हमने मुक्त होना है. भक्ति नीचे है, मुक्ति ऊपर है. तो अगर उनकी इस बात को भी मान लिया जाए कि ठीक है, फिर उनसे पूछो कि अगर कृष्ण की भक्ति करने से मुक्ति मिल रही है इसका मतलब क्या है? कृष्ण तो बद जीव है, तो किसी बद जीव की भक्ति करके आप मुक्त कैसे हो सकते हो? किसी भी बद जीव का नाम लेकर उसके नाम का कीर्तन लेकर आप मुक्त हो सकते हो? नहीं हो सकते. भगवान गीता में बोल रहे हैं कि ये जो मेरी माया है बहुत दुष्कर है. माँ में भी ये प्रबंधनते माया में तब तरंती थे. जब तक आप मेरी शरण में नहीं आओगे इस माया को पार नहीं कर सकते. अगर भगवान की शरण में जाने से हम माया के पार पहुंच सकते हैं, इसका मतलब क्या है? कि भगवान इस माया से परे हैं. तो अगर आप भगवान का कीर्तन कर रहे हो, उसे कीर्तन पर नाच रहे हो और फिर आप मुक्त होना चाहते हो, तो निश्चित रूप से वो जिस पुरुष का आप कीर्तन कर रहे हो दिव्य पुरुष है, वो दिव्य है. तो अगर भगवान का शरीर भौतिक है तो इस गीता का कोई महत्व नहीं है. अगर भगवान का शरीर भौतिक है तो उनके नाम का कोई महत्व नहीं है. अगर भगवान का शरीर भौतिक है तो उनकी लीलाएं फिर कैसी? एक भौतिक शरीर से छोटा बच्चा गोवर्धन कैसे उठा सकता है? एक छोटे शरीर, एक भौतिक शरीर अपने आप को विस्तार कर सकता है 16108 में? कैसे कर सकता है? करके दिखाइए. एक भौतिक शरीर अपना विराट रूप दिखा सकता है? तो फिर कौन सी लीलाएं आप सुना रहे हैं? लेकिन वो भागवत शब्दा भी करते हैं और तरह तरह की लीलाएं भी सुनाते हैं. क्यों सुना रहे हो भाई? ये लीलाएं कैसे कमान है? ये तो कहानी है. अगर भगवान भौतिक के प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है तो ये सारी की सारी लीलाएं मात्र कहानियां हैं, कल्पना. तो काल्पनिक कहानियों की क्यों चर्चा कर रहे हो? कोई भी फिल्मी स्टोरी उठा लो उसकी चर्चा करो फिर. लेकिन वो भागवत कथा भी करेंगे. तो ये पूरे समाज में धोखेबाजी चल रही है. और अगर भगवान का शरीर भौतिक है तो भगवान को जो हम भोग लगाते हैं और उनका जो प्रसाद मिलता है उसमें कैसी दिव्यता है? उसमें दिव्यता कैसे आ सकती है? अगर भगवान का शरीर भौतिक है दिव्यता आ ही नहीं सकती. एक बार जब रशिया में कम्युनिज्म था तो वहां की पुलिस, केजीबी पुलिस परेशान हो गई कि इन भक्तों को इतना तंग किया हमने, जेल खाने में डाल दिया, उतना उत्पीड़न किया, फिर भी ये नहीं समझते. तो किसी ने उनको सुराग दिया कि एक बात मालूम चले है, जो ये खाते हैं ना इसमें कुछ स्पेशल है, इसमें कुछ मिला होगा, तभी इनके अंदर कुछ इतनी शक्तियां हैं. तो केजीबी पुलिस, वो तो भगवान को मानते नहीं है, बोले ठीक है जो ये प्रसाद लेते हैं सबका सब सीज कर लो, पकड़ लो फटाफट. जैसे ही प्रसाद आया पकड़ लिया था, यहां पे आप नहीं पाएंगे, ले जाएंगे. ले गए बेचारे तरह तरह की लेबोरेटरी में, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए. क्या है इसमें स्पेशल? कुछ नहीं मिला. कुछ नहीं मिला क्योंकि ये दिव्य है. भौतिक से उनको यही मिलेगा, इतना फॉस्फोरस, इतना आयरन, इतना ये है बस, और कुछ नहीं मिला. वो समझ नहीं पा रही कहां से इनको इतनी शक्तियां आ रही है. वो शक्ति आ रही है भगवान के दिव्य प्रसाद से. अगर भगवान का शरीर भौतिक है, किसी भौतिक व्यक्ति का आप उच्चिष्ट खाएंगे कौन सी शक्ति आ जाएगी आपके अंदर? बाकी उसके सारे पाप आपको लगेंगे. लेकिन भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट हम खाते हैं तो हमें दिव्यता प्राप्त होती है. तो निश्चित रूप से ये बहुत से ऐसे हमें आर्गुमेंट्स मिल सकते हैं कि भगवान का शरीर भौतिक नहीं है. भगवान प्रकृति के तीन गुणों के अधीन नहीं होते. भगवान जब प्रकट हुए थे देवकी और वसुदेव के समक्ष तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, और चतुर्भुज रूप में प्रकट होने के बाद धीरे धीरे वो एक सामान्य शिशु के रूप में आए. उस शिशु की भी चार भुजाएं थी, फिर धीरे धीरे दो भुज वाले शिशु के रूप में आ गए. इसी तरह से गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, विराट रूप दिखाने के बाद भगवान चतुर्भुज रूप में आए और फिर अर्जुन के रिक्वेस्ट पर भगवान दोबारा से द्विभुज रूप में प्रकट हुए। तो ये भगवान ही केवल कर सकते हैं, साधारण मनुष्य ये सब नहीं कर सकता। और भगवान चाहे छोटे बालक हो या युवा हो, चाहे किसी भी अवतार में हो, भगवान हमेशा षट ऐश्वर्य पूर्ण रहते हैं। बहुत ही जगह का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, कोई भी एक पद जी बता दीजिए जो षट ऐश्वर्य पूर्ण है, कोई नहीं सकता। एक दो ऐश्वर्य सीमित समय के लिए, सीमित मात्रा में। भगवान छह के छह ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, असीमित समय के लिए। भौतिक पद जीव के छह छह ऐश्वर्य क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हमारे छह ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, असीमित समय के लिए। असीमित मात्रा में पर असीमित समय के लिए, तभी हम नित्य बंध हैं। तो ये हमारे छह ऐश्वर्य हैं और भगवान के छह ऐश्वर्य आप सब जानते हैं। तो क्या मुकाबला है एक पद जीव का और भगवान का? तो स्वयंभू मनु यहां पे श्लोक में ध्रुव महाराज को समझा रहे हैं कि भगवान पिछले श्लोक में बताया कि हे पुत्र, कुबेर के अनुचर यक्षगण तुम्हारे भाई के वास्तविक मानने वाले नहीं हैं। प्रत्येक जीवात्मा का जन्म तथा मृत्यु तो समस्त कारणों के कारण परमेश्वर द्वारा ही होती है। तो भगवान उनको ये बता रहे हैं कि तुम यक्षों को अपना शत्रु मान रहे हो, वास्तव में यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध नहीं किया, तुम्हारे भाई का जन्म और मृत्यु का कारण तो परमेश्वर है। तो अगर आपको ये मान चल गया ध्रुव महाराज जी को कि मेरे भाई के मृत्यु का कारण यक्ष नहीं विष्णु है, तो क्या करेगा? विष्णु से लड़ूंगा। अरे ऐसे में यक्षों को मारता रहा, जैसे हिरण्यकश्यप को मालूम चला कि हिरण्यकश्यप को मेरे भाई को विष्णु ने मारा, तो अब मैं विष्णु को मारूंगा। तो ध्रुव हो सकता है ध्रुव सोचेगा मैं विष्णु को मारूंगा, इसलिए स्वयं उन्होंने तुरंत बता रहे हैं हालांकि वो तुम्हारे भाई के मृत्यु का कारण है, लेकिन वो कर्मों के बंधे नहीं फंसते। वो इस बॉडी की सृष्टि करते हैं, पालते हैं, उसका संहार करते हैं, लेकिन ऐसे कार्यों से परे रहने के कारण वे ना तो अहंकार से ना ही प्रकृति के तीन गुणों द्वारा प्रभावित होते हैं। और आगे के श्लोकों में बताएंगे कि वे सारा कार्य अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा करवाते हैं। तो इसीलिए स्वयंभू मनु ये ज्ञान ध्रुव महाराज जी को दे रहे हैं। तो हम सबको जैसे श्रीला प्रभुपाद और भक्ति सांसद ठाकुर महाराज बहुत ही तीव्रता से और बड़े उत्साह से मायावाद का खंडन करते थे, तो हम सब भक्तों को भी बड़ा इसमें हमेशा तैयार रहना चाहिए मायावाद का हम खंडन करें, क्योंकि जब तक हम मायावाद का खंडन नहीं करेंगे तो इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं कि भगवान का शरीर भौतिक है या भगवान निराकार है, यानी हमारे पिता निराकार है। निराकार का मतलब क्या हुआ कि हमारे पिता है ही नहीं। अब आपके पिता निराकार बोल रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं देंगे, तो मतलब क्या हुआ वो है ही नहीं। जैसे एक कहानी आपको बताई थी पहले एक बारी, एक राजा का एक बहुत प्रिय हाथी था। जब बहुत प्रिय हाथी था तो वो चला गया कुछ समय के लिए और मंत्री को बोल गया कि हाथी की देखभाल करो, और कुछ समय के बाद हाथी की मृत्यु हो गई। तो जब राजा वापस आया तो मंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी राजा को बता सके कि हाथी मर गया है। तो राजा ने पूछा कि हाथी कहाँ है? तो मंत्री बोला हाथी है। कहाँ है, क्या कर रहा है? कहे सो रहा है। कहता अच्छा कुछ खाया? नहीं कुछ खाया भी नहीं है। अच्छा कुछ हिलता डुलता? नहीं हिलता डुलता भी नहीं है। कुछ कर रहा है? सांस ले रहा है? सांस भी नहीं ले रहा। अरे मर गया क्या? कहते मैंने ऐसा थोड़ी कहा मर गया, नहीं खाता है, ना ही सोता है, ना ही हिलता डुलता है, ना ही सांस लेता है, नहीं मरा नहीं है। उसी ढंग से मायावादी लोग हैं, भगवान है लेकिन उसकी ना आंखें हैं, ना कान है, ना देखता है, ना सुनता है, ना खाता है, तो क्या है? मर गया क्या? नहीं ऐसा नहीं करे मर गया है लेकिन निराकार। तो हम सबको इसका खंडन बहुत जोर शोर से करना चाहिए। हमें ऐसे करना चाहिए कि कोई हमें गाली दे रहा है कि आपके पिता निराकार है, ऐसे हमें महसूस होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त तभी इतने जोर शोर से इसका खंडन करते हैं। और साथ में श्लोक से हमें कुछ अपने लिए हमें सीखने को मिलता है। हमें मायावाद का तो खंडन करना ही है, लेकिन साथ में बहुत बड़ा मायावाद हमारे हृदय में भी छिपा हुआ है। हम सब यहाँ पे क्यों आए हैं? हम सब इसलिए आए हैं कि हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं। मायावाद यही तो है कि सबके सब कृष्ण हैं, तो हम भगवान बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में चाहे चींटी हो या ब्रह्मा जी हो, हर कोई सोच रहा है कि मैं रचयिता हूं और मैं भोक्ता हूं। श्री प्रभुपाद कहते थे मैं क्रिएटर हूं और मैं इंजॉयर हूं, तो हम यही सोच रहे हैं। जब तक हमारे में ये भावना बनी रहेगी कि मैं रचयिता हूं और मैं भोक्ता हूं, तो हमारे अंदर मायावाद छिपा रहेगा। और जब तक हमारे अंदर मायावाद छिपा रहेगा, भगवान कपिल बताते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 29वें श्लोक में आम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मवस्थिता कि सदा परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। तो जो मायावादी लोग हैं वो भागवतम के इस श्लोक को लेते हैं कि देखो यहाँ भगवान ने बताया कि वह सब जीवों में विद्यमान है। यहाँ गीता का श्लोक है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। तो बोलते देखिए भगवान सब जीवों में है, मतलब कि सब जीव भगवान है। तो कपिल भगवान उसमें इसमें बता रहे हैं, तात्पर्य विष्णु प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनके शब्द श्लोकों के अनुवाद में बताया जा रहा है कि अगर परमात्मा सब जीवों के हृदय में विद्यमान है तो हर एक जीवात्मा का शरीर क्या हो गया, मंदिर के समान हो गया। और हर एक जीवात्मा का शरीर मंदिर के समान हो गया और हम जानते हैं कि भगवान दिव्य है और वही भगवान हमारे इष्ट इस मंदिर में उपस्थित हैं, तो क्या हम उस जीवात्मा का कभी उससे द्वेष करेंगे, कभी उससे हम झगड़ा करेंगे, कभी उसकी हम अवहेलना करेंगे, कर ही नहीं सकते। तो अभी तक इसे हमें जांचना चाहिए कि मेरे अंदर कितना मायावाद छिपा हुआ है। अगर किसी एक जीवात्मा के प्रति भी मेरे मन में द्वेष है, इसका मतलब है कि अभी मेरे अंदर का मायावाद समाप्त नहीं हुआ। एक जीवात्मा के प्रति, भक्त तो छोड़ो, भक्तों से द्वेष की बात छोड़ो, किसी और जीवात्मा के प्रति भी द्वेष की भावना है, क्योंकि हर एक जीवात्मा के हृदय में भगवान उपस्थित है। तो अगर हम जीवात्मा से द्वेष कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से द्वेष कर रहे हैं, तो मतलब कि हम भूल रहे हैं किसके अंदर भगवान है, भगवान की दिव्यता को हम भूल रहे हैं। तो मायावाद यही तो है, भगवान की दिव्यता को भूलना। तो हमें मायावाद का तो खंडन करना ही है, साथ ही साथ अपने आप को भी जांचना रहना चाहिए कि मेरे अंदर से कितना मायावाद अभी दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दूसरा, जब हम अष्ट विग्रह के सामने उपस्थित होते हैं तो भगवान और भगवान की अष्ट विग्रह में कोई अंतर नहीं है, तो हम अष्ट विग्रह की कितनी अवहेलना करते हैं, हम तो उसको पत्थर की मूर्ति समझते हैं। तो मायावादी लोग भी उसको पत्थर की मूर्ति समझते हैं, क्या हमें लगता है कि साक्षात राधिका रमण जी खड़े। तो अभी हमारे मन में वो भाव नहीं आ रहा, वो धीरे धीरे स्वतः ही आएगा, लेकिन फिर भी जो भक्ति रसा में सिंधु में बताए गए हैं एटिकेट्स, उसका हमें पालन करना चाहिए। भगवान के अर्थ विग्रह के सामने हमें ये हमारे मन में भाव ये कि साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हैं। तो हमें बताया गया भक्ति रसा में सिंधु में कि हमें अर्थ विग्रह के सामने जोर जोर से हंसना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए। देखा गया मंदिर में भक्त लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करनी है तो केवल कृष्ण का कीर्तन, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, बड़े दिनों बाद मिले, कहाँ थे, बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हो गया, आ नहीं रहे, नहीं। बातचीत करनी है तो हम बाहर आकर साइड में कर सकते हैं, लेकिन भगवान के विग्रह के सामने हमें कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने हमें जोरों से हंसना नहीं चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए, और भगवान के विग्रह के सामने हमें पैर पसार के नहीं बैठने चाहिए, ऐसे पैर पसार के बैठ जाए, ऐसे पैर नहीं दिखाने चाहिए। और भी बहुत से नियम है, हम सबको भक्ति रसामृत सिंधु पढ़कर उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि ये तो साधारण मूर्ति है, तो वही बात हो गई ना कि कृष्ण साधारण पुरुष है, ये विग्रह नहीं है, मूर्ति है, तो ये मायावादी तो हो गया। मायावादी भी पंच उपासक होते हैं, उनके मंदिर में मूर्तियां होती हैं, तो हम भी बस दस मूर्ति की अर्चना कर रहे हैं, इस भगवान नहीं समझ रहे। अगर वास्तव में भगवान है तो हमें एक शुद्ध भक्त होता है वो तो अर्थ विग्रह को भगवान के रूप में ही देखता है, लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त की स्थिति में नहीं है तो कम से कम वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, उसको अर्थ विग्रह के सामने बहुत ही सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, बहुत ही सावधानीपूर्वक। जैसे हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पाते ही तुरंत हमें भगवान के दर्शन के लिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें जब हम भगवान को प्रणाम करेंगे तो हम हवा पास कर सकते हैं, तो वो भी एक अपराध है। और ना ही जोर जोर से बातें करनी चाहिए, ना ही भगवान के आगे चिल्लाना चाहिए, रोना चाहिए, हंसना चाहिए, भगवान के विग्रह को पैर नहीं दिखाना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हैं, आज काफी उसमें नियम बताए गए हैं, उसको हमें पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। और ना ही जिस तरह से हमें ये मानना चाहिए कि किसी के साथ कोई बुरी घटना हो गई तो भगवान इसके जिम्मेवार है, क्योंकि भगवान कहीं कर्म फल में फंसते नहीं है। जीवात्मा के साथ जो अच्छा हो रहा है, जो सुख और दुख प्राप्त हो रहे हैं, अपने कर्म फलों के कारण प्राप्त हो रहे हैं। तो ये भावना हम सबके अंदर रहती है कि कुछ भी हमारे साथ बुरा हो गया भगवान ने कराया। जैसे अंतिम बस एक उदाहरण दूंगा जो कि बहुत रुचिकर है, कल भी बताया था, परसों ये मेरे साथ सुनने को मिला कि हमारे एक भक्त थे, तो मिले परसों में सोमवार को, उनकी आयु 45 वर्ष की है, तो बोला कि मैं काफी सालों से जन्माष्टमी रखना इस बार जन्माष्टमी का जो व्रत रखा वो बिल्कुल दिव्य था बड़ा प्रसन्न हुआ मैं कैसे रखा कहते बिल्कुल निर्जला रखा केवल एक तुलसी का पत्ता खाया फिर रात को और पूरा दिन मैंने भगवद गीता पढ़ी और मंदिर में आया दर्शन किए वेरी गुड रात को जाके घर में जाके अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक किया बहुत अच्छा फिर रात को एक बजे थोड़ा सा प्रसाद लिया फलाहार किया और पानी पी के सो गया बहुत अच्छा चल रहा है और पूरे दिन में मैंने 55 माला की बहुत अच्छे फिर हुआ क्या हुआ ये जब रात को एक बजे मैंने थोड़ा सा कट्टू के आटे का प्रसाद पाया तो रात को पेट में दर्द शुरू हो गया बहुत दर्द हुआ मैं सो नहीं पाया और फिर मेरे मन में भाव आया कैसे भगवान है जिनके लिए मैंने इतना बड़ा व्रत रखा निर्जला रहा 55 माला की पूरी भगवद गीता पढ़ी इतने एहसान फरामोश कि अब मैं रात को सोना चाहता हूँ और मेरे पेट में दर्द कर रहे हैं सही में बता रहा हूँ ये मधुर शक्ति नहीं है और ये भक्त पिछले 6 महीने से 16 माला कर रहे थे और जब उनके मन में ऐसे भाव आए और क्या हुआ कहते हैं तब से मेरा मन इतना खराब हो गया कि मैं 16 माला कर ही नहीं पाता कभी 4 कभी 5 माला हो रही है बस मेरा मन ही उछट गया कृष्ण से विश्वास ही उठ गया तो ये हमारे साथ भी होता है कि माला करने शुरू की कुछ किया कुछ हमारे साथ दिखने में अशुभ घटना हो जाए तो बस कृष्ण ने करवाई है तो क्या फायदा ऐसी पूजा का अक्सर देखा जाता है फिल्मों में तो डायलॉग सुनने को मिलते ही हैं कि तू पत्थर की मूर्ति है तू ये है तू वो है और कई घरों में भी कुछ ऐसा हो जाता है तो मंदिर खोलकर भगवान के सामने बोलते हैं क्या तेरा न्याय क्या तेरा ये अगर मैंने जितनी भी भक्ति की है तो मेरे इस बच्चे को ठीक कर दे ठीक नहीं किया तो कैसा भगवान है तू ये सब बातें मतलब ये है कि हम सोच रहे हैं कि भगवान जी इस भौतिक जगत के हैं और भगवान भी कर्मों के बंधन में फंसते हैं नहीं हम हर जीवात्मा अपने ही मौके बंधन में फंसी हुई है तो इस मानसिकता से इस चेतना से हमें ऊपर उठना है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण किसी को भी प्रश्न या टिप्पणी है नहीं इसमें कुछ भी नहीं है इसका प्रश्न है कि जन्माष्टमी के दिन किसी भक्त ने घर में मंदिर की स्थापना की मंदिर की स्थापना करते हुए जो प्रसाद लगाया वो पितरों को अर्पण नहीं किया तो अगले दिन उनकी जो मृत माता थी किसी के रिश्तेदार के सपने में आई वो खूब उसकी पिटाई की कि मुझे खिलाया पिलाएगा एक्सपायर्ड है ना मतलब कि वो सपने में आई अब इसका क्या कोई इसका शास्त्रों के नाम से कोई ऐसा नहीं है सही बात है कर्मों का फल मिलना चाहिए था तो या तो उनके सपने में आती आपके सपने में आती पितरों को देना चाहिए श्राद्ध दान करते ही है श्राद्ध दान करते ही नहीं कुछ नहीं ऐसा कुछ जहां तक मेरी जानकारी ऐसा कुछ है क्यों प्रभु जी ऐसा कुछ है अर्च विग्रह की स्थापना के समय पितरों को देते हैं क्या हाँ वैसे तो मैं मालूम ऐसे यज्ञ कोई हो रहा हो तो पितरों के लिए ऐसा यज्ञ कुछ दान नहीं करते ये यज्ञ था हाँ कुछ कोई पाप नहीं हुआ ऐसे मैं रोना चाहिए ऐसा नहीं कि चिल्लाना चाहिए जोर जोर से चिल्ला रहे हैं किसी घर में कुछ मृत्यु होगी आके चिल्ला रहे हैं कि तू कैसा भगवान है देखिए तेरी माया क्या है तू ऐसे सब चिल्ला रहे हैं और वो कर रहे हैं ऐसे हम व्यक्ति अपने आके शोक के कारण कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा गुरु की आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा कितना मेरे में काम क्रोध है ऐसे में करके भक्त व्यक्तिगत रूप से भगवान से कर सकता है उसे कुछ अपने शोक करते हुए कुछ आंसू वो अलग बात है लेकिन जोर जोर से रोना चिल्लाना वो घूमने का मतलब है कई लोग आते हैं वो जोर जोर से चक्कर काटते हैं